अंशु गिरवा झुकाए मारिस के उत्तेजना रहित परंतु कठोर शब्दों को सुनती रही। परास्त और विचलित न होने का उसका निश्चय तथ्य जान पड़ते तर्क के संपर्क से जल की शीतल धार कटकर नदी में गिरते रेत के कगार की भांति प्रवाह में गिर पड़ रहा था। वह जैसे आश्रय के लिए मारिस की प्रतीक्षा में फैली आमंत्रित करती भुजाओं में गिर पड़ना चाहती थी। वह प्रकाश की न्यूनता की शरण पाए ऊठ दबाए बैठी रही। वह अपने नेत्रों की आर्द्रता मारिस के सम्मुख प्रकट न होने देना चाहती थी, इस कारण नेत्र पोंछ लेने की सुविधा न थी। गिरवा झुकी रहने के कारण वह यह भी न जान सकती थी कि मारिस उसकी ओर देख रहा है अथवा मेघों की ओर। आलिंद में सहसा प्रकाश हो गया। प्रकाश हाथ में लिए दासी दग्धा ने आकर निवेदन किया, स्वामिनी भोजन के लिए आर्य और देवी की प्रतीक्षा कर रही हैं। निराश्रय मझधार में बह जाती अंशु ने त्राण पाया। मारिस अनेक बार देवी रत्न प्रभाग के प्रसाद में आतिथ्य ग्रहण कर चुका था, परंतु इतने दिन न टिका था। मारिस का समय विरक्त और मौन रहकर वायु में हिलते वृक्षों के पत्रों को देखते रहने में न कटता। उसने प्रसाद के उद्यान में मौल श्री वृक्ष के नीचे जलकुंड के समीप एक शिलाखंड लेकर मूर्ति गढ़ना आरंभ किया। भाद्रपद के मेघ रहित आकाश के प्रचंड सूर्य की किरणों में भी माथे से श्वेत की धाराएं बहते हुए और वर्षा में भीगते हुए भी वह हथौड़ा और छेनी लिए विशाल शिलाखंड में से अपनी कल्पना का रूप निखारने के परिश्रम में व्यस्त रहने लगा। रत्न प्रभा कभी प्रातः और कभी संध्या नित्य ही उस शिलाखंड में से प्रकट होते रूप को देखने जाती। रत्न प्रभा के पूछने पर कि वह क्या बना रहा है, मारिस उत्तर देता, अपनी कल्पना को, मन की कामना को चरितार्थ कर रहा हूँ। मारिस को संबोधन करते समय रत्न प्रभा के ओठों पर और नेत्रों में प्रकट मुस्कान के पीछे हृदय में वेदन का एक सूल सा खटकता रहता। जीवन के संपूर्ण प्रयत्न में उसने जनपद कल्याणी की अपनी प्रतिष्ठा और वैभव का मंदिर खड़ा किया था, परंतु इस मंदिर में अर्चना के देवता का स्थान शून्य ही रह गया। इस अभाव के कारण उस वैभव और सफलता की कुछ सार्थकता न पाई। क्या मारिस पुरुष देवता के रूप में उस अभाव को पूर्ण नहीं कर सकता? रत्न प्रभा सोचती, मारिस से पुरुष के देवत्व की भिक्षा मांग उसे क्या देगी? अपना ऊपर वार्धक्य उस उच्छृंखल युवक पर वह केवल अपना वात्सल्य ही निछावर कर सकती थी। और अंशुमाला, अंशु का यौवन कछुए की भांति अपने आप में सिपटा हुआ अनुराग के पहरों को व्यर्थ कर रहा था। इस चतुर आखेटक ने उसे मर्मस्थान पर चेतना का वाण मारकर उसे व्याकुल कर दिया। आत्मरक्षा के लिए वह गहरे जल के एकांत में छिपकर त्राण खोज रही है। रत्न प्रभा मन ही मन दुलार से कहती, मूर्ख, श्वास रोके कब तक तू गहन थल के एकांत में पड़ी रहेगी? तेरे सम्मुख जीवन का मार्ग है और तेरी प्राण शक्ति तुझे उस ओर ले जा रही है। तू स्वयं अपने से कब तक युद्ध करेगी? जाने नक्षत्र की क्या इच्छा है? अंशु परास्त और विचलित न होने का निश्चय किए अपने आप से लड़ रही थी। मध्याह्न की निरवता में अपने कक्ष में अकेली रहने पर उससे मारिस की छेनी और हथौड़ा लेकर शिलाखंड पर निरंतर आघात करने का शब्द सुनाई देता रहता। उसे अनुभव होता वह प्रहार स्वयं उसके अपने हृदय पर हो रहे हैं, फिर भी उन्हें सुनने की प्रवृत्ति होती, कुछ मधुर लगता। कोई आक्रोश या प्रतिहिंसा उन प्रहारों के प्रति उसे न थी। उसे आक्रोश था अपने प्रति, क्यों वह विचलित हो रही है। उस दिन मेघाच्छन्न शीतल दिवस में भी मारिस शिलाखंड और अपने यत्नों को भुलाए निश्चेष्ट बैठा था। रत्न प्रभा ने जिज्ञासा की, आर्य आज कला कार्य में विरक्त क्यों है? देवी वह भावपूर्ण हो गया। मारिस के उत्तर में रत्न प्रभा विस्मित रह गई। बीच में केवल एक ही दिन वह शिलाखंड के समीप न जा सकी थी। उसने सोचा, इतने अल्प समय में वह विशाल शिलाखंड किस चमत्कार से मूर्ति में परिणित हो गया? क्या आर्य कला का वह उत्कृष्ट रत्न स्वयं चलकर दिखाएंगे? उसने मारिस से आग्रह किया। मारिस की अनुमति प्रकट करने पर रत्न प्रभा ने दासी दग्धा को आदेश दिया, सखी अंशमाला को और मुक्तावली को भी आयुष्मान की कलाकृति का दर्शन सुख पाने के लिए निमंत्रित करो। जलकुंड के समीप खड़े शिलाखंड को रत्न प्रभा, अंशमाला और मुक्तावली ध्यान से देख रही थी। शिलाखंड का ऊपर और नीचे का भाग अछूता था, केवल मध्य भाग में दक्षिण की ओर आधे भाग में गवाक्ष बन गया था और उसे किसी पूर्ण युवा नारी का उन्नत स्थान त्रिवली पर भीतर झुकाव और नाभि से झुकता वारतुल्य उभार दिखाई दे रहा था। रत्न प्रभा अपनी सखियों सहित अनेक क्षण चिबुक पर तजने रखे ध्यान से उस कृति का मनन करती रही। मारिस भी मौन खड़ा रहा। आर्य, रत्नप्रभा ने मूर्तिकार को संबोधन किया, क्या यह कृति पूर्ण है? देवी, मेरे अभिप्राय से यह पूर्ण है, मारिश ने उत्तर दिया। रत्नप्रभा ने मुस्कान से आग्रह किया, आर्य, मेरे मत से यह नारी का अंग मात्र है, पूर्ण नारी नहीं। अपने रूखे केसों को उंगुली से खुजाकर मारिश ने उत्तर दिया, देवी का कथन उचित है, परंतु नारी का यही अंग उसके नारित्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आवाहन करता है और फिर उसी पल भूत सार्थकता का पोषण करता है, यही नारी है देवी। रत्नप्रभा ने विचार में गंभीर मारिश की ओर आदर से देखा, आर्य, यह पाषाण के चीर स्थायी स्वर में नारी के जीवन की व्याख्या है। रत्नप्रभा के स्वर में स्तुति थी। मुक्तावली ने लजाकर ओठों पर आ गई मुस्कान छिपाने के लिए मुख फेर लिया। अंशु ने ध्यान से शिलाखंड में कटे गवाक्ष की ओर देखती रही। उसके कान में मारिश के वे शब्द ही गूंज रहे थे जो नारी में सृष्टि की आदि शक्ति है। अंशु रात्रि में पुनः अनिद्रा से पर्यक पर करोटे लेती, उभरे उरूजों के नीचे अधीर होती, हृदय को दोनों हाथों से संभाले जीवन की सार्थकता के मूल्य की मीमांसा करती रहती। प्रत्येक कुछ क्षण पश्चात दीर्घ निश्वास लेकर वह निश्चय करती वह अविचलित रहेगी। दूसरे दिन प्रातः रात्रि में अनिद्रा के कारण मस्तिष्क पर छाई हुई जड़ता से मुक्ति पाने के लिए अंशु सूर्योदय के समय ही अपने कक्ष में उठ उद्यान में फूले कदम्ब के नीचे जा बैठी। मारिश की ओर अपनी ओर आते देख उसे अपने ऊपर क्रोध अनुभव हुआ, परंतु शालीनता से उसने अभ्यर्थना की, आर्य का मन और शरीर स्वस्थ है? कदम्ब वृक्ष के तने का आश्रय लेकर मारिश अंशु के समीप खड़ा हो गया। उसके नेत्र अनिद्रा के कारण रक्त और उभारे हुए थे। अंशु के बोझिल और शांत नेत्रों की ओर देखकर उत्तर में उसने प्रश्न किया, भद्रे, क्या मन की दुविधा के कारण अनिद्रा जनित शैथिल्य को दूर करने की चेष्टा में है? आर्य का अनुमान सत्य है, मुस्कान का शिष्टाचार भूल अंशुमाला ने ग्रीवा झुकाकर उत्तर दिया, परंतु भद्रे, समस्या का समाधान हुए बिना दुविधा का अंत नहीं होता। समस्या है प्राणों और जीवन की स्वाभाविक गति और प्रवृत्ति की पुकार। प्राणों का दमन और आत्महनन समस्या का समाधान नहीं है, परंतु आर्य, मेरे लिए प्राणों के दमन और आत्महनन के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं, निरुत्साह से अंशु ने उत्तर दिया। इस विश्वास का कारण भद्रे, आर्य, मैं त्रस्त हूँ, अपने जीवन के अनुभवों से त्रस्त हूँ। अंशु के नेत्रों और स्वर में कातरता आ गई। मारिश कदम्ब के बिच्छों का आश्रय छोड़कर अपने पांव पर खड़ा हो गया और बोला, भद्रे, जीवन का कोई अनुभव अस्थायी और चिरंतर नहीं। जीवन की स्थिति समय में है और समय प्रवाह है। प्रवाह में साधु असाधु, प्रिय अप्रिय सभी कुछ आता है। प्रवाह का यह क्रम ही सृष्टि और प्रकृति की नित्यता है। जीवन के प्रवाह में एक समय असाधु अप्रिय अनुभव आया, इसलिए उस प्रवाह से विरक्त होकर जीवन की तृषा को तृप्त न करना केवल हठ है। आर्य, उस प्रयत्न में विफल हो चुकी हूँ। भद्रे, जिन परिस्थितियों में वह प्रयत्न विफल हुआ वह शाश्वत नहीं थी। निरंतर प्रयत्न ही जीवन का लक्षण है। जीवन के एक प्रयत्न या एक अंश की विफलता संपूर्ण जीवन की विफलता नहीं है भद्रे। मारिश की उत्तर की प्रतीक्षा में मौन देखकर अंशुमाला झुके हुए नेत्र उसकी ओर उठाकर बोली, आर्य, यह भी सत्य है, परंतु मैं त्रस्त हूँ। प्रश्रय के मूल्य पर जीवन की सार्थकता नहीं चाहती। जीवन की विफलता में भी मुझे वेश्या की आत्मनिर्भरता स्वीकार है। आर्य, यही मेरा निश्चय है। अपने आप को नितांत अवश्य अनुभव कर उसने उत्तरी से नेत्र ढककर घिरवा छुआ ली। मारिश एक दीर्घ निश्वास से अपने आप को संयत कर पुनः बोला, भद्रे, संतोष पाने और संतोष देने की आशा से मैंने तुम्हें क्लेशित किया। देवी का निश्चय जानकर आज मारिश पुनः मथुरापुरी से प्रस्थान कर जाएगा। भद्रे, उसका शुभ संकल्प स्वीकार करें। मारिश के मथुरापुरी से गए 1.5 वर्ष व्यतीत हो गया। रत्नप्रभा प्राय उसे स्मरण कर उसके प्रसंग में बात करती। अंशु ने स्वयं वार्तालाप में उस स्मृति को कभी न जगाया। सैन्य सैन्य उसके प्रकट व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। निरंतर अवसाद की जड़ता से मुक्ति पाकर कला के अध्यावसाय में वह विशेष उत्साह पाने लगी। उस वर्ष वृंदावन के दोलोत्सव में उसने गुरु पूजा के अभिनय में नृत्य संगीत का नवीन समन्वय सरस्वती मल्लिका नाम से उपस्थित किया। उसकी ख्याति जनश्रुतियों की लहरी पर दूर देशों की ओर फैलने लगी। मथुरापुरी के रसिक समाज ने संतोष अनुभव किया। नगर की शोभा जनपद कल्याणी रत्नप्रभा के उद्यान में कला की अस्फुट कलिका अंशमाला अपने पाटल दल विकसित कर सौरभ उन्मुक्त करने लगी। सुदूर देश सांगल में स्थित कला की अधिष्ठात्री मल्लिका की उन्होंने केवल कीर्ति सुनी थी, अंशुमाला को वह स्वयं देख रहे हैं। अंशुमाला से अधिक सरस कला की कल्पना उनके लिए संभव न थी। अंशुमाला का निराशा और विरक्ति में बीतने वाला एकांत समय कला के रहस्यों के चिंतन और साधन में बीतने लगा। वह मारिस की स्मृति से मुक्ति पाने का संघर्ष न करती, जैसे तात, प्रबुद्ध शर्मा, धाता और छाया की स्मृति थी, वैसे ही मारिस की भी उससे कुछ अधिक समीप। कभी वह आशा करती पुनः आने पर आर्य देखेंगे कि मैंने जीवन में संतोष का एक अवलंब पाया है। शिशिर के आरंभ में एक दिन रात्रि के पहरे पहर की समाप्ति पर समाज का अंत हुआ। नृत्य के श्रम से छलके हुए श्वेत बिंदुओं पर शीतल वायु का सुखद स्पर्श पाने के लिए अंशमाला चतुस्साल से निकलकर शुक्ल पक्ष की चांदनी में छटके मालती कुंज की ओर चली गई। कुछ समय पश्चात एक दासी ने आकर निवेदन किया, देवी, एक अभिजात विदेशी अभ्यागत साक्षात्कार के लिए चतुस्साल में इस समय तक प्रतीक्षा कर रहा है। अंशु की कल्पना में मारिस की स्मृति कौंध गई, परंतु दासियां आर्य मारिस से परिचित थी। सुने हो गए चतुस्साल में अभ्यागत दीप के प्रकाश में अकेला बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। आलिंद में ही सविनय अभिवादन कर समीप जाकर अंशु ने ध्यान से देखा, विस्मय से मुक्त रह गए उसके ओष्ठ से निकला, आर्य कुशल क्षेम है? तात, बंधुवर्ग और कुलनारियां कुशल हैं? आर्य ने इस नगरी पर कब कृपा की? अंशुमाला के शिष्टाचार की मुस्कान का प्रभाव रुद्रधीर की गंभीरता पर न पड़ा। उसने उत्तर दिया, भद्रे को स्मरण होगा, धर्मस्थान से पाए 2 सहस्त्र दिवस के निर्वासन दंड के कारण इतने काल तक मैं सांगल में नहीं था। केवल संवाद द्वारा ही सांगल का वृत्तांत जान पाया। मगध प्रवास के समय देवी अंशमाला की ख्याति सुनकर स्वदेश के मार्ग में देवी के दर्शन की इच्छा से चला आया। जो देख रहा हूँ कल्पनातीत था। रुद्रधीर के संकेत से मन पर आते अवसाद का प्रतिकार कर और मुख पर मुस्कान बनाए रखने का यत्न कर अंशमाला ने उत्तर दिया, आर्य, स्त्रोत से निकलते समय जल नहीं जानता वह किस दिशा में, किस नदी की और किस सागर में बह जाएगा। अंशुमाला की तटस्थ सरलता को कुंठित होकर उसका मन कुरेदने के अभिप्राय से रुद्रधीर ने कहा, दास पुत्र पृथ्वीसेन और गणपति की पौत्री शिरो के विवाह का समाचार मगध में सुना था, और कुमारी के विषय में अकाल मृत्यु का अपवाद भी। क्या यह भद्रे की उसी शरीर में उसका पुनर्जन्म है? अंशुमाला विक्षिप्त न हुई, आर्य का अनुमान सत्य है, उसने मुस्कुरा कर दिया। अंशु के तथस्थता रुद्रधीर के लिए सहाय हो गई, ऐसा ही होगा। उसकी ग्रीवा झुक गई और फिर सहसा नेत्र उठाकर अंशु के नेत्रों में देखकर वह बोला, प्रपौत्री के शोक में तात धर्मत्स्य के स्वर्गावरोहण का संवाद भी सुना था। स्वयं ही लज्जा अनुभव कर उसकी दृष्टि पुनः झुक गई और क्षीण स्वर में उसने कहा, तात आचार्य भी उदर रोग से संसार मुक्त हो चुके हैं। अंशुमाला कुछ क्षण मौन रह गई, उसका स्वर आर्द्र हो गया। तात आचार्य और तात धर्मत्स्य अत्यंत वात्सल्य थे, वे सभी के प्रिय थे, वे देवताओं के आदर योग्य थे, इसलिए स्वर्ग में भी उनका आवाहन हुआ। आर्य को विदेश में और आत्रा में असुविधा तो नहीं? मगध विशाल और समृद्ध साम्राज्य है, उसकी विशेष ख्याति और महिमा है, परंतु मातृभूमि का आकर्षक स्वभावतः प्रबल होता है। स्वदेश के लिए आर्य की यात्रा मंगलमय हो। चिरकाल पश्चात सहसा दिव्या को देखकर जैसा भावोद्वेग रुद्रधीर ने अनुभव किया था, वैसा आयोग दिव्या के व्यवहार में न था। वह मन ही मन अत्यंत अनुत्साहित और कुंठित हो रहा था। इस परिस्थिति को टालने के लिए वह बोला, इस समय विलंब हो जाने के कारण भद्रे अवकाश दें, यदि मथुरापुरी में कुछ समय रहा तो पुनः दर्शन की इच्छा करूँगा, कृपा होगी आर्य। हाथ जोड़कर विनीत शिष्टाचार से अंशुमाला ने उत्तर दिया, अभ्यागतों का अनुग्रह ही इस प्रसाद का सौभाग्य है, दासी अनुग्रहित होगी। मथुरापुरी में रुद्रधीर ने महापंडित आचार्य सुचित के प्रसाद में आतिथ्य ग्रहण किया था। मगध में ही सूरसेन की जनपद कल्याणी रत्नप्रभा की शिष्या अंशुमाला की ख्याति सुनकर कौतूहल से देवी का दर्शन करने वह रत्नप्रभा के प्रसाद में गया। वहां अकस्मात अपने विश्वास में मृत्यु दिव्या को सजीव पाकर दिव्या के प्रति उसका अतीत अनुराग सहसा उमड़ आया, परंतु दिव्या के व्यवहार में शिष्टाचार का आवरण लिए विरक्ति से वह हत प्रतिभ अनुभव कर रहा था। अंशुमाला निसंकोच शालीनता उसे वेश्या के व्यवसायिक शिष्टा जान पड़ा, जो कुलकन्या के लिए निर्लज्जता और धृष्टता थी। अनुराग और विरक्ति के द्वंद्व से रुद्रधीर का मस्तिष्क विक्षिप्त हो उठा। रत्नप्रभा के समाज में दिव्या को पहचान कर रुद्रधीर अनेक क्षण तक विस्मय से जड़वत रहा। मस्तिष्क सुस्त होने पर सांगल का अतीत जीवन उसकी कल्पना में सजीव हो उठा। नंसुमाला और मुक्तावली का नृत्य और रत्न प्रभा का संगीत उसके लिए निरर्थक और निष्प्रयोजन था। अपनी कल्पना में वह तात धर्मत्स तथा अन्य सामंत गणों के प्रसादों और देवी मल्लिका के समाज में स्थान स्थान पर दिव्या को देखने लगा। अब वह फिर उसी सांगल की ओर लौट रहा था। मलक्षों, दासों और शूद्रों के हाथों से मद्र के द्विजकुल की राजलक्ष्मी का उद्धार करने की उसकी प्रतिज्ञा थी। उस मार्ग में मद्र की द्विजकुल के अपमान के संकेत दास पुत्र पृथ्वसेन द्वारा वंचित प्रताड़ित दिव्या का उद्धार कर वह पृथ्वसेन और मद्रसेन के जन समाज को दिखाएगा विजय किसकी है। परंतु दिव्या के व्यवहार और शब्दों ने उसकी कल्पना के प्रसाद की भित्ति ढहा दी। मन में उमंग उठी आशा को दीर्घ निश्वास से निकाल फेंकने का यत्न कर वह अपने मन को समझाने लगा। जैसे संकोचशील भीरु कुलकन्या कुमारी दिव्या की कामना उसने की थी, वह संसार से लोप हो चुकी है, परंतु प्रत्यक्ष देखे सत्य को उसका यह मानसिक प्रयास परास्त न कर सका। महापंडित आचार्य सुचित के विशाल प्रसाद में मध्यरात्रि की देव पूजा के अनुष्ठान में घंटा, घड़ियाल और शंख का नाद समाप्त होकर निरवता छा गई। प्रहरियों की अपनी निद्रा के प्रतिकार के लिए दूसरे को सचेत और सावधान रहने की ललकार के अतिरिक्त और कोई शब्द सुनाई न देता था। ललकार की रक्षा में निद्रागतों के समस्वास की निरवता विशाल प्रसाद के प्रत्येक कक्ष में उठकर आकाश में भर रही थी। परंतु रुद्रधीर के नेत्रों में निद्रा न थी। गृहपद की विशेष अनुग्रहित आयोजन से अत्यंत कोमल पर्यक पाकर भी वह मानसिक उलझन के कारण करवटे ही ले रहा था। निद्रा के सभी संचारी उपकरण व्यर्थ थे। सुस्वादु भोजन और सुरभित मधुर सुराव से रुच नहीं रही थी। यात्रा के श्रांत शरीर ने कोमलांगी सेवा चतुर्दासी द्वारा सेवा पाकर भी विश्राम अनुभव न किया था। दिव्या का व्यावसायिक शिष्टाचार और उसका अतीत की उपेक्षा करना रुद्रधीर को बार बार स्मरण हो जाता। बार बार उसके शब्द मस्तिष्क में जाग उठते। अभ्यागतों का अनुग्रह ही इस प्रसाद का सौभाग्य है। दासी अनुग्रहित होगी। साधारण अभ्यागतों के प्रति आदर का यह व्यवहार रुद्रधीर को अपनी असहाय उपेक्षा और अपमान अनुभव हुआ। इन शब्दों में वेश्या की आत्मा और उसकी वृत्ति की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। कोमल पुनीत कुलकन्या दिव्या के मृत शरीर पर उसने निर्लज्ज वारंगना अंशमाला तांडव करती दिखाई दे रही थी। भ्रांति के मार्ग पर पड़ गए अपने पदों को लौटाकर वह अपने ध्येय की ओर चलने के लिए मन को समझा रहा था। आचार्य सुचित की गोष्ठी में उसने अंशुमाला की विशेष स्तुति सुनी। वेश्या के गुणों को कुल नारी के लिए अपवाद स्वरूप ग्रहण कर उसने अपने मन को समझाया। वेश्या मोहन उसका व्यवसाय है, परंतु वृद्ध आचार्य सुचित के पुत्र रुद्रधीर के समवयस्क अनिरुद्ध ने अंशुमाला के प्रति विरक्ति से कहा, अंशुमाला दूर से देखने की वस्तु है, वह कला की काष्ठ पुतलिका है, उसका भाव विलास केवल कला का अनुष्ठान है, वह निलिप्त नर्तकी है, वह कला की वृत्ति करती है, वह मन को संतोष देने वाली वेश्या नहीं है। अंशुमाला के प्रति अपवाद के इस आघात ने रुद्रधीर के कानों पर पड़कर अनिच्छा होने पर भी उसे कल्पना करते रहने के लिए विवश कर दिया और उसकी कल्पना में से शक्ति अंशुमाला के शव पर छली दास पुत्र द्वारा पीड़ित और त्रस्त पुनीत कुमारी दिव्या अपने सौभाग्य रूप में खड़ी दिखाई देने लगी। रुद्रधीर विचलित हो उठा। रुद्रधीर ने यात्रा की श्रांति दूर करने के लिए मथुरापुरी में केवल 2 दिवस विश्राम करने का निश्चय किया था, परंतु उसे वहां एक पक्ष बीत गया। वह नित्य संध्या समय रत्न प्रभा के प्रसाद में जाकर समाज में सम्मिलित होता। समाज के पश्चात भी प्रसाद में विलंब कर वह अंशुमाला से वार्तालाप करता। अंशुमाला विनीत श्रेष्ट और निसंकोच आदर के लिए प्रस्तुत रहती। आत्मीयता से शून्य शिष्टाचार से पूर्ण अंशुमाला का व्यवहार रुद्रधीर के लिए संतोष का नहीं व्यथा का ही कारण होता। वह सांगल के प्रसादों में समाज के समय अपने सम्मुख आ जाने से भाव में संकोच की भीरुता, नेत्रों में लज्जा की कातरता से गिरवा झुका लेने वाले दिव्या के व्यवहार में पुनः अपने तेज को सुकृत देख पाने के लिए व्याकुल और व्यग्र हो रहा था। रुद्रधीर के विचार और विश्वास में अतीत की स्मृति के संबंध में अंशमाला के समीप उसका विशेष स्थान और अधिकार था। प्रत्न रत्न प्रभा के समाज में सम्मिलित होने वाला सतस अभिजात वंशीय प्रतिष्ठितों में उन्हीं के समान एक व्यक्ति था। अधिक द्रव्य भेंट कर सकने वाले अतिथियों का आदर अपनी अपेक्षा अधिक देखना उसे अधिकार और वंश का निरादर था। समूह में उपेक्षित और अनिर्दिष्ट रह जाना उसके लिए हृदय पर शूल के आघात के समान था। उस व्यवहार से विरक्ति अनुभव कर उसने अतिथेय के यहाँ लौट जाता। रात्रि के एकांत में विचार करते समय अनिरुद्ध शर्मा के मुख से सुना अपवाद कानों में पुनः पुनः गूंजता रहता, अंशुमाला कला की काष्ठ पुतल क्या है, उसका भाव विलास केवल कला का अनुष्ठान है, वह निर्लिप्त नर्तकी है, वह कला की वृत्ति करती है, वह मन को संतोष देने वाली वेश्या नहीं। रुद्रधीर का मन आगे कहता, वह विप्र कुल की कन्या है, अभिजात सामंत वंश की वधु लक्ष्मी है, उसका नारित्व तो सुरक्षित है। रुद्रधीर की विरक्ति प्रबल आसक्ति में परिणित हो जाती, वह निश्चय ही दिव्या को पुनः प्राप्त करेगा। रुद्रधीर के लिए किसी संध्या भी रत्न प्रभा के समाज में अनुपस्थित रहना असंभव हो गया। रुद्रधीर ने निश्चय किया, वेश्या के आसन पर स्थित दिव्या की दृष्टि में अपने लोभ के कारण न सही, स्वामिनी की सेवा के विचार से सही। यदि दिव्या का द्रव्य का ही सम्मान है तो द्रव्य भी वह देगा, द्रव्यहीन वह भी नहीं। वह मद्र गणराज्य की परिषद के संवाहक का पुत्र, 10 ग्राम के अग्रहार का उत्तराधिकारी, विप्र सामंत है। विदेश में यात्रा करते समय रुद्रधीर विशेष द्रव्य लेकर न चला था। शांगल से विदेश के लिए प्रस्थान करते समय आचार प्रवर्धन ने अभाव और आड़े समय पुत्र की रक्षा के लिए केवल सिंघल के बड़े बड़े मुक्ताओं का 7 लड़ी का हार रुद्रधीर के गले में अपने हाथों से पहना दिया था। वह बहुमूल्य हार प्राय 1 ग्राम की संपत्ति के मूल्य का और आचार्य वंश की पारिवारिक संपत्ति का अंग था। रुद्रधीर उस हार को अपने वस्त्रों के नीचे सदा हृदय पर पहने रहता था। अंशुमाला समाज में अस्तोन्मुख चंद्रमा के प्रति चक्रवाक की व्याकुलता का रूपक नाच रही थी। निष्फलक समाज अत्यंत तन्मयता से उसकी प्रत्येक भावभंगी को देख रहा था। अंशु की फैली बाहों में अंगुलियां नेत्र ओष्ठ सूक्ष्म कंपन से चक्रवाक की व्यग्रता प्रकट कर रहे थे। अभिनय भावोद्रक की चरम सीमा पर पहुंच गया। समाज अवरुद्ध श्वास और स्तब्ध था। मुद्रा पूर्ण कर अंशुमाला ने श्वास लिया। वादक अपने यंत्रों को एक ओर रखकर मस्तक से श्वेत पोषने लगे। नर्तकी की मोहक कला पर निछावर रसिक समाज अपनी भावना की अभिव्यक्ति में स्वर्ण मुद्रा रत्न और आभूषण रत्न प्रभा के आसन के सम्मुख भेंट करने लगा। अंशु मुस्कान से रसिकों का आदर स्वीकार कर रही थी। सहसा मुक्ता का एक भारी हार समाज में फेंका जाकर अंशुमाला के चरणों के समीप गिरा। उस माला को देखकर समाज विस्मित रह गया। समीप बैठे श्रेष्ठ विनायक के नेत्र फैल गए। उसके मुख से सहसा निकला 1,000 स्वर्ण मुद्रा। समाज माला फेंकने वाले विदेशी की ओर विस्मय से देखने लगा। अंशु ने देखा रुद्रधीर माला फेंक कर ग्रीवा ऊंची किए ललकार की मुद्रा में खड़ा था। समाज में पाई भेंट व देवी रत्न प्रभा के सम्मुख रखती जाती थी, परंतु वह उस माला को मस्तक से लगाकर हाथ में थामे रही। समाज समाप्त होने पर रुद्रधीर अंशुमाला की ओर न गया। गंभीर मुद्रा में वह अपने आसन पर ही बैठा रहा। अंशुमाला हाथ में मुक्ता माला लिए कृतज्ञता से मुस्कुराती हुई उसके आसन की ओर गई। मन में रुद्रधीर ने कहा, आज अपना मूल्य पाकर तुम संतुष्ट हुई हो। रुद्रधीर के समीप आकर अंशुमाला विनय से बोली, कला के प्रति अति अनुराग से दी गई आर्य की इस बहुमूल्य भेंट के लिए दासी सदा कृतज्ञ रहेगी। रुद्रधीर ने संतोष का श्वास लेकर उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा दिया। अंशुमाला ने प्रार्थना की, सांगल में आर्य ऐसी सतस भेंट निछावर कर सकते थे, परंतु विदेश में संकट के समय सहायक हो सकने योग्य इस वस्तु को आर्य अपने से पृथक न करें। कुंठित भाव से निराशा अनुभव कर रुद्रधीर ने प्रश्न किया, क्यों, क्या यह क्षुद्र भेंट देवी को स्वीकृति के योग्य नहीं? उसके स्वर में कठोरता आ गई। वेश्या का आसन स्वीकार कर लेने पर क्या द्रव्य के लोभ की सीमा नहीं रहती? नहीं आर्य, अंशुमाला अभी मुस्कुरा रही थी, दासी आर्य की भावना से कृतज्ञ थी, भावना को शिरोधार्य करती है। उसने माला मस्तक से छुआ कर कहा, परंतु उस भावना के प्रतीक यह मुक्ता माला लौटा रही हूँ। जैसे आर्य पत्र से केवल अर्थ ग्रहण किया जाता है, पात्र नहीं, ऐसा ही आर्य की विदेश की परिस्थिति के कारण है। व्यवसाय की मुस्कान लिए निसंकोच दृष्ट अंशुमाला ने रुद्रधीर की दृष्टि में सहसा विराट गरिमा धारण कर ली। उसके रोम सिहर उठे, भाव इसमें उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। रुद्रधीर भावावेश से उष्ण अपना हाथ मुस्कुराती हुई अंशुमाला के शीतल बहुमूल्य पर रखकर अधीर स्वर में बोला, भद्रे मेरे समीप तुम आज भी श्रेष्ठ विप्रकुल की कुमारी हो। तुम्हारा स्थान विप्रकुल की वधुलक्ष्मी के आसन पर है। 7 वर्ष पूर्व आचार्य अग्रहार रुद्रधीर तुम्हारे प्राण के लिए तुम्हारे परिवार के सम्मुख प्रार्थी था। देवी आज तुम स्वतंत्र हो, इसलिए रुद्रधीर तुम्हें प्राणी के लिए तुम्हारे सम्मुख प्रार्थी है। रुद्रधीर सांगल के कुलश्री को पुनः सांगल पहुंचाकर सांगल को भाग्यवान करेगा। अंशुमाला के ओठों पर अभी चित्र लिखित से मुस्कान स्थिर थी। अंशुमाला के बाहुमूल्य पर रुद्रधीर की उंगलियां कठिन हो गई। भद्रे, रुद्रधीर ने संबोधन किया, तुम्हें आचार्य पत्नी के रूप में ग्रहण कर रुद्रधीर सांगल लौटेगा। तुम्हारा स्थान आर्य कुल की महादेवी के आसन पर है। अंशुमाला की मुस्कान अभी विचलित न हुई, केवल कोमल परंतु स्थिर स्वर में उसने उत्तर दिया, आर्य सांगल के सविल्य वंश की कुमारी दिव्या मति भ्रम से अथवा भाग्य से जीवन की सरिता के अनजाने प्रवाह में प्रवेश कर गई। जब वह उस प्रवाह से निकली तो वह वेश्या नर्थ की अंशमाला है। वह अपने कौमार्य की पवित्रता भी खो चुकी, एक स्वामी के लिए अर्पित न होकर वह सांगल और जन की संपत्ति बन गई। रुद्रधीन ने अंशमाला के और समीप होकर उत्तेजित आर्द स्वर में आग्रह किया, भद्रे कंचन की खान से लौह उत्पन्न नहीं हो सकता, वर्ष और कुल मनुष्य की शक्ति से ऊपर देवता की कृति है, मनुष्य न कुल दे सकता है न कुल छीन ही सकता है, तुम्हारी धमनियों में विप्र का रक्त है, कीचड़ में गिरकर भी उस स्वयं पत्थर नहीं हो सकता। रुद्रधीर प्रतिज्ञा करता है, सांगल के आचार्य पद पर वह तुम्हें पत्नी के रूप में ग्रहण करेगा। रुद्रधीर ने गंभीरता से अंशमाला के सरल मुस्कान भरे नेत्रों से देखा। अंशु ने विनय से मुस्कुरा दिया, आर्य की भावना के प्रति दासी अत्यंत कृतज्ञ है, अपनी प्रवृत्ति के कारण दासी कुलवधि के सम्मान के योग्य नहीं, दुर्भाग्य की अग्नि में जल कर दासी ने स्वतंत्र नारी का कलंक पाया है, वही उसे प्रिय है। क्या कहती हो कुमारी, तुम विप्र कन्या हो। रुद्रधीर का स्वर कांप रहा था। आर्य अंशुमाला ने मुस्कुराकर ही उत्तर दिया,